वही सत्यम परमधीमहि, कृष्ण जो त्रिसत्य हैं और वही परब्रह्म हैं, वही निगूढ़ ब्रह्म है, गूढ़ ब्रह्म, गूढ़ ब्रह्म
गुणम परब्रह्म।
और अहो भाग्यम, अहो भाग्यम जब नंद गोप रजौ प्रशांत जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन इत्यादि भी बताया। तो उसी को करें सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य स्वरूप पर ब्रह्म का मैं, वो कैसे हैं जन्मादस्य जगत, ये दूसरे अर्थ में ले सकते हैं कृष्ण के अर्थ में, जिनसे आद्य जन्मा,
जिन्होंने जन्म आदि से लेकर के
आद्य
जन्म आदि से लेकर के सभी लीलाओं को प्रकट की है,
वो जीव गोस्वामी का सर
किसने,
वो जीव गोस्वामी जन्म गोकुल में, मथुरा में या गोकुल में जन्म से लेकर के जितनी लीलाओं को प्रकट, ये जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी का जब बतलाएंगे तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दिन जन्मादस्य जप आद्य श्रृंगार रस, सबसे पहला शांत रस है या मधुर रस, कौन रस कौन रस है पहला, पहले तो आदमी कफ कफ से आ से पढ़ता है ना, किंतु इस जगत का नियम है हम कफ कफ नीचे से चलते, किंतु उस जगत का नियम क्या है, वो ऊपर से उतरता है, उसका मूल है ऊपर और नीचे उसकी शाखाएं और फल फूल पत्ते डाल उसका है
संसार आदि।
तो वहां पर जितने रस हैं इस जगत में, जब रस की शिक्षा करेंगे तो पहले शांत से हम चले, शांत सख्त वात्सल्य अंत में, और किंतु जब विचार करेंगे वैज्ञानिक तरह से तो आद्य रस माने पहला रस ही है श्रृंगार रस, उसी से ही समस्त जितने भी रस होते हैं उसे प्रकाश में, उसी के अंदर में सब है अंशिक, जैसे कृष्ण प्रकट होते हैं तो जितने पहले के उनके अवतार हैं, अंश हैं, कला हैं, तद्रूप वैभव हैं, और भविष्यत में भी जितने अवतीर्ण होंगे वो सब कृष्ण के साथ में उनके अंतर में प्रकट होते, सबको थोड़ी भूत होकर के रहते हैं, ऐसे श्रृंगार रस में ही ये सब रस है, इसलिए आदर्श। तो जिनसे श्रृंगार रस होता है प्रकट होता है वो कैसे होता है, अन्वयादि इतरतश्च, अन्वय माने संयोग के द्वारा, कृष्ण का पहला राग होता है पूर्व राग से, उनको देखने से आरंभ करके मिलन तक ये सब जितने उनके भाव हैं ये एक दूसरे संयोग, और दूसरा होता है मिलने के बाद में जब विरह होता है तो विरह, यही दोनों प्रकार के प्रेम, इन्हीं प्रेमों की मूर्तियां कौन है, गोपियां। तो इसको ये बतला रहे हैं जब जिनके द्वारा कृष्ण ही यदि नहीं होते तो ये आदर्श कभी भी संभव नहीं, इसलिए इसके मूल ये कृष्ण है, कौन कृष्ण है, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही ये स्वयं वो है। अर्थेशु, यहां अर्थेशु माने जो श्रृंगार रस की जो 64 प्रकार की कलाएं हैं उन सब कलाओं में ये अत्यंत अभिज्ञ है, भक्ति से आरंभ करके जितनी 64 प्रकार की कलाएं हैं, इसका अतिरिक्त नित्य गीत वाद्य किसी को मनाना इत्यादि जितनी भी कलाएं हैं समस्त कलाओं में कृष्ण ही अभिज्ञ है, इसके अतिरिक्त में बल्कि उन्होंने दिया है हर्क मुनि के हृदय में कुछ थोड़ा सा उन्होंने प्रकाश किया, इसलिए थोड़ा सा वर्णन किया, किंतु उनका वर्णन अमान मन सोगोचर प्राकृतिक पूर्ण रूप से नहीं हो सका, जिस रस में ये अभिज्ञ है कोई भी दूसरा अभिज्ञ नहीं, इसलिए अर्थेशु, अर्थेशु माने वो सब जो प्रेम की जो कलाएं हैं उन सब में यह विद्या है। स्वरा उनको किसी से सीखना नहीं है, वो सब प्रकाश वस्तु है। तेने ब्रह्म हृदय जाद कबे मुनि अंत जब सूर्या, जिस विषय में बड़े बड़े मुक्त महापुरुष लोग भी ब्रह्मा शंकर और दूसरे दूसरे लोग जब ब्रह्म रुद्र सुकनारद भीष्म मुक्ति आलक्षितो अनुसार पुरुष, ये सभी मोहित हो जाते हैं उसको, अर्थात तेने ब्रह्म रस ब्रह्म हृदय भक्त हृदय सुखदेव गोस्वामी इत्यादि ये उन्होंने प्रकाश किए। ब्रह्मा के लिए तो होगा शब्द ब्रह्मवे उनको हृदय में प्रकाशित, किंतु सुखदेव गोस्वामी इत्यादि के हृदय में या व्यास और नारद के हृदय में उन्होंने तेने रस ब्रह्म उनके हृदय में प्रकाशित। आदि कवे मुहियंति जब सूरी लोग आदि कवि तक भी, आदि कवि ने भक्त इत्यादि जिसमें मोहित हो जाते हैं, और नहीं तो आदि कवि जब इधर में लाएंगे तो आदि कवि ब्रह्मा नारद व्यास सुखदेव इनके हृदय में रस ब्रह्म की उत्पत्ति ने प्रकट किया, जिससे कि श्रीमद् भागवत जैसा रस ग्रंथ उन लोगों ने जगत में प्रकाश, नहीं तो ये कभी नहीं होगा। क्यों वो दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवत का
निगम
फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसम आलयम, ये श्रीमद् भागवत ही रस का आलय, ये यदि नहीं प्रकाश करते तो नहीं हो सकता था। मोजंत जब सूर्य जिसमें ये सब जो बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महर्षि और ब्रह्मा इत्यादि हैं शंकर जी हैं ये सब लोग जिसमें मोहित हो जाते उसको तेज बार निदान, जिस कृष्ण के वृंदावन में बिहार में जो लीला हुई उन लीलाओं को दर्शन करके उस रस को दर्शन करके जिन्होंने बंसी के द्वारा जिस रस को उन्होंने वर्षा की उस रस से पूरा किया तेजो बारी निदान जब प्रतिमय, जिससे ये चंद्र जो है वो क्या हो गए मिट्टी के समान बन गए, कहा चंद्र सरोवर पर वो चलना भूल गए और जो तेज है वो मलिन हो गए, उस रास में कृष्ण के आसन वाद्य देख करके वह एकदम मलिन बन गए और तेजो पानी जमुना का जल जो था वो मट्टी बन गया, पत्थर जैसा कठोर बन गया और मृदंग पहाड़ गिरिराज और चरण पहाड़ी
पिघल गए
और भूमि सब पिघल गई, जिनके बंसी की ध्वनि से जिनके रूप को सौंदर्य को देख करके और बंसी का यह रस वर्षा से सब उलट उलट हो गया, जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ सा हो गया। का स्त्री थे कल्पदायक वेग बीत संभोगिता अर्चरिता न चले त्रैल त्रैलोक्तम, जब वो तो कारण है तेजो बार मिला, जिसके साधारण रूप में दर्शन से जिसके रूप के माधुर्य से बंसी के निनाद से विनिमय एक दूसरे जैसे अर्थात जड़ चेतन जैसा चेतन जड़ जैसा तेज साधारण जैसा दिखाई पड़े मलिन और बारी जमुना पर्वत इत्यादि जैसे कठोर बन गई और मृदंग माने मिट्टी का जो ये रूपांतर जो पत्थर इत्यादि वो सब पिघल करके पानी बन गए। जथा त्रिभुवन जब तक श्री सर्वो अमृषा, जहां पर कि तीन स्वर्ग, तीन स्वर्ग क्या है, गोकुल मथुरा और द्वारका, मथुरा और ये त्रिसर्ग अमृषा ये नित्य परम सत्य है, और रादिनी संबित और संदिनी ये तीनों जो शक्तियां हैं, ये तीन जो स्वर्ग हैं और इनके जो प्रकाश हैं सब समय नित्य हैं और सर्वत्र ये व्याप्त हैं त्रिसर्ग। और कृष्ण की त्रिविध लीलाएं हैं, कैसी लीलाएं,
बाल्लभ
ये तीन प्रकार की जो लीलाएं हैं, ये त्रिसर्ग जो हैं सब समय नित्य सत्य हैं, उन सब के साथ में अपनी शक्तियों के साथ में धामना स्वयं अपने धाम में अपनी शक्तियों के साथ में नित्य जो विराजमान है, निरस्त को कम वहां पर माया का कोई भी कुछ नहीं है, सत्यम परम अभिमयी उस सत्य स्वरूप परम सत्य स्वरूप जो कृष्ण है उनका मैं ध्यान, वो हमारे ध्यान में। अब तीसरा, केवल कृष्ण से नहीं रस होगा, नहीं हो सकता, शक्ति प्रधान रहे, राधा कृष्ण सीता राम इत्यादि जितने भी हैं ये शक्ति की प्रधानता है, ये जो कुछ जगत में दिखता है शक्ति की ही व्यक्तित्वता दिख पड़ती है, शक्तिमान नहीं दिख पड़ता, उसका स्वरूप लक्षण है केवल इच्छा शक्ति, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, और जो कुछ देखते हैं शक्ति की ही ये विचित्रता है। तो यहां पर कहते हैं जन्मादर्श जता सत्यम परम अभिमही, सत्य स्वरूप भगवान की लादरी शक्ति रूपी महाभाव रूपा जो राधा जी और उनके साथ में रसराज जो कृष्ण है, उन दोनों का मैं ध्यान करता हूं, जो अपने ध्यान में सब समय लीला विलास में रहते हैं अपनी शक्तियों और अर्थात अपनी सखियों इत्यादि गोपियों के सहित, उनका मैं ध्यान करता हूं दोनों का, जिससे जन्म आदि सिंगा रस का जिससे जन्म होता है, अन्वय और व्यतिरेक रूप में होता है, कैसे अन्वय रूप और व्यतिरेक रूप में, संयोग के रूप में, राधा जी के साथ में कृष्ण का साथ यदि संयोग होगा तो ये महाभाव रूप अधिरूढ़
मोदन माधन
में मोदन
मदन माधन
मादन
मोहन
दिव्य दिव्योन्माद प्रेम वैचित्र यहां तक पहुंच गया जो कहीं नहीं प्रकाश, और वियोग में वियोग में चित्र जल इत्यादि तक मोहन के रूप में यह पहुंचता है, यह दोनों नरे तो रस परिपूर्ण नहीं होगा, इसलिए मिलन और वियोग दोनों से ये मिल करके ये कृष्ण का यह जो रस है आद्य रस ये प्रकाश, इनमें ये कृष्ण और राधा जी अभिज्ञ है, रस कैसे निष्पत्ति होगी इसके लिए राधा जी अभिज्ञ है, इसलिए अभिज्ञ होते नाते वो मान कर लेती है, किस लिए, रस को नित्य नूतन बनाने के लिए मान कर लेती है, और कृष्ण को अपनी सेवा में नियुक्त कर देती है, नहीं तो रस बनता ही नहीं, इसलिए राधा जी अभिज्ञ है, उधर कृष्ण भी अभिज्ञ है, परम विदग्ध है रस विषय में, इसलिए वो राधा जी का मान दूर करने के लिए सब कुछ करते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसा कभी भी किसी भी भगवत अवतार में उन्होंने नहीं किया, इसलिए किसी भी अवतार में ये सब रस नहीं हुआ, और अवतारों में अधिक से अधिक ऐश्वर्य की लीलाएं हुई, माधुर्य की लीलाएं नहीं हुई, तो बहुत अल्प हुई, प्रकाश नहीं है, किंतु कृष्ण में ही ये लीलाएं, राधा कृष्ण के लीलाओं में ही यह रस पर पूर्णतम तक पहुंचा है, अभिज्ञ स्वराग राधा जी भी अपने में पूर्ण है और कृष्ण भी अपने में परिपूर्ण है, दोनों तेने ब्रह्म हृदा, इन्होंने वही रस ब्रह्म सुखदेव गोस्वामी के हृदय में आदि कवि प्रकट किया, क्योंकि ये कृष्ण के सुख हैं, राधा जी के सुख हैं और कृष्ण के हाथों में गए हैं, अब तब इनकी अनुभूति हुई है, हैं सुख किंतु उनके हृदय में इन लोगों ने दोनों ने मिलकर के प्रकाश किया उस रस ब्रह्म, तब ये जगत में उसको गुरु परंपरा की धारा से अब तक वो देखे। जत्र आग मुह्यंती जब सूर्य ब्रह्मा शंकर इत्यादि वही अर्थ, सब लोग इस रस में मोहित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं इनको, यहां तक कि ब्रह्मा भी ब्रज में आए किंतु इस रस तक नहीं पहुंच पाए, बस बाल्य लीला एक देखी और ऐश्वर्य देखा जो उन्होंने अभासुर को भी मुक्ति दे दी और इसी में वो आश्चर्यचकित होकर के बस इतने ही में रह गए। कृष्ण ने कुछ दिखलाना भी चाहा तो वो पहले चतुर्भुज रूप में दिखे और फिर इसके बाद में कृष्ण रूप में देखे। जितनी जितनी जगत के जितनी भी वृक्ष लता गुल्म सब कुछ को उन्होंने कृष्ण के रूप में दर्शन किया, यहां तक उनकी बंसी टंसी सब कुछ वो कृष्ण, बस कुछ उनके दिमाग में नहीं आया तो लगती की भांति में गिर पड़े और वो वर्णन करने लगे। वो श्रीमद् भागवत के 14वें दशम के 14वें कुछ कुछ वर्णन किया। तो इस तरह से ब्रह्मा इत्यादि जिसमें मोहित हो जाते हैं, तेज बार मृदान जत्र विनमय, इनके दोनों के मिलने से जो रस होता है उस रस में यही बतलाया जाए, पहले जमुना चंद्र
और चरण पहाड़ी
इत्यादि सब द्रवित हो जाते हैं, आज भी उनके चरण चिन्ह वहां पर देखे जा सकते हैं। जब तक त्रिसर्गो अमृषा, त्रिसर्गो राधा कृष्ण का त्रिसर्ग क्या है,
पुलवरा नीलन
यही सब होगा कुछ, ये तीनों सर्ग जो है त्रिसर्ग अमृषा, अर्थात उनकी जो लीला है ऐसा हो दिया वृंदावन में पूर्ण लीला उनकी परिपूर्णतम, मथुरा में पूर्णतर अर्थात सत्यभामा रुक्मणी इत्यादि ये सब वहां की, और द्वारका में पूर्ण उनकी वहां पर रुक्मणी सत्यभामा के रूप में राधा जी और कृष्ण मिले। इस तरह से अपने धाम में सदा सेन सदा निरस्त रूपम सत्यम परम धीमहि, उस राधा और कृष्ण को मैं ध्यान करता हूं हमारे हृदय और भक्ति वृत्ति के लिए क्या कहा, जिस कृष्ण से कृष्ण की कृपा से ही केवल, अर्थात भक्ति जब तक नहीं रहेगी कृष्ण को नहीं हम लोग पा सकते, इसलिए जन्मादर्श जत भक्ति के द्वारा ही भक्ति का जन्म या प्रादुर्भाव होता है, पहले होता है साधन भक्ति फिर भाव भक्ति और अंत में प्रेमा भक्ति, अन्य और इतर, अन्य माने क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये हुआ अनुकूल अनुशीलन, और प्रतिकूल जो कि त्याग करने लायक है अपराध अनर्थ इत्यादि सबको दूर करना, कुटी नाटी इत्यादि जीव हिंसा इत्यादि है ये सबको दूर करना, इसके द्वारा मन का वेग क्रोध का वेग जीवा वेग उदर जो जो गोस्वामी ने और ये सब ने इन सबको दूर किया जाए और भक्ति को ग्रहण किया जाए, अनुकूल अनुशीलन और प्रातिकूल वर्जन, अपराध इत्यादि और भाव, इसके द्वारा भक्ति स्वतंत्र है, चिन्मय वस्तु है। जब देखती है कि ये इसके हृदय में हमको उत्पन्न होना है तो भक्ति अनुग्रह करके उसके हृदय में नानात्मा प्रवचन लगभग उसी तरह से भक्ति का भी। और स्वराग किसी अन्न जोग तपस्या व्रत इत्यादि के द्वारा भक्ति प्रकटित नहीं होगी, ज्ञान से भी नहीं होगी, जोग से भी नहीं होगी। इसलिए बतलाया अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्म आदि अनभ्युतम, ज्ञान के द्वारा नहीं होगा। ज्ञाने प्रयासम उदपश्य, ज्ञान के प्रयास को छोड़ो, योग तपस्या प्रथम सद्ध्याय सदाचार इत्यादि से वो भक्ति नहीं होगी। भक्ति स्वतंत्र अवलंबना, भक्ति स्वतंत्र होगी,
भक्ति निरादर भक्ति
तेरे ब्रह्म में दया जर आग कमे भूमियंत जल सूर्य वही भक्ति रे मैन नयति भक्ति
दर्शयति
वही भगवान का दर्शन कराती है। इसलिए भक्ति आद कवे माने ब्रह्मा के हृदय में प्रकट हुई और उनसे नारद नारद से व्यास, इस तरह से वो भक्ति की परंपरा आज तक भी गुरु के परंपरा में आ गई, जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग ज्ञानी लोग और सब लोग मोहित हो जाते हैं। किसमें? प्रेम भक्ति के लिए। तेजो बार मृदान जत्र विनमयो, इसकी जैसा देखना पड़ेगा ये क्या यथा विनमय जत्र तीस और वो अनुरीशा। भक्ति के तीन ये जो भाव साधन भाव और प्रेम, तीनों ही सत्य हैं। तीनों अवस्था में भक्ति निर्गुणा है, केवल साधना के और साधक के मन के तारतम्य से उसको ऐसा कहा जाता है, किंतु भक्ति एक ही है। वो अपने धाम में निरंतर रह करके और कृष्ण की सेवा करती है और जीवों को भी लेकर के वहीं पर उनको दर्शन करती है। ऐसी भक्ति के लिए हम सत्यम परम अभिमयी हम उनका आज अभी हम लोगों को कृष्ण जन्मभूमि में जाना है, इसलिए आज यही पर हम समाप्त करते हैं। कल फिर इसका और दूसरा भाव और कर्म जो है हम बताएंगे आज मन सारा कल बतुल। अच्छा हम लोग भक्ति प्रेम राधा तत्व कृष्ण तत्व प्रेम तत्व विलास तत्व सब कुछ को प्रकाश कर, ऊपर से नहीं किसी को जानने दिया, उनको भी नहीं जानने दिया और प्रकाश कर। ऐसे ही ब्रह्मा जी को जैसे हुआ है हमारे हृदय में आपने ये प्रकाश किया, मैं तो इन चीजों को जानता नहीं। अच्छा सचमुच में ये विशाखा सखी यदि थे तो ये जानते थे कि नहीं? जानते तो थे, किंतु योग माया के प्रभाव से कृष्ण अपनी भगवत्ता को, राधा अपने को राधनी शक्ति और गोपियां अपने को वैसी, ये योग माया के प्रभाव से नहीं जानते, कृष्ण भी नहीं जानते कि मैं भगवान हूं। इसी से उनकी लीला होती है, नित्य लीला नहीं होती। उसी तरह से विशाखा जी हैं राधामन, किंतु उस समय तक योग माया के प्रभाव से उनका यह भाव अच्छा भी था। महाप्रभु जी की कृपा से फिर योग माया वहां से थोड़ी सी हट गई और उनका भाव यहाँ पर कह रहे हैं। अब वो समझ गए उनके बोली से चाली से भंग से और उनके प्रश्न पूछने के तरीके से वो समझ गए ये जो सामने जो सन्यासी हैं ये सन्यासी नहीं है, ये कोई ये कपट कपट सन्यासी है, ये धूर्त है वो, और ये धूर्त और कोई नहीं, ये कृष्ण ही स्वयं है वो समझ गए। और चतुराई से ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, पूछने के ढंग से ही पता लग जाता है ये कौन व्यक्ति, तो वो समझ गए। उन्होंने इसको संशय के रूप में प्रकाश किया, प्रभु हमारे हृदय में एक संशय आ गया, ठाकुर जी ने काजी से क्या संशय आ गया। वो कहते हैं कि देखिए संशय आपके सामने प्रकाश करना, आप कृपा करके उस संशय को आप पहले देख लू तुम्हार सन्यासी स्वरूप एवे तुम्हार देखी हुई श्याम गो तू। पहले जब मैं आया यहाँ आप मिले तो आपको एक ब्राह्मण सन्यासी तेजस्वी सन्यासी के रूप में आपको हमने देखा, किंतु इन प्रश्नों के बाद में अब मैं जो आपको देख रहा हूँ अब तो सन्यासी रूप मुझको आपके अंदर में दिखता नहीं महाप्रभु जी, किंतु उस समय में सन्यासी वेश में ही है, किंतु ये कह रहे हैं अब मैं आपको सन्यासी के रूप में नहीं है, अब देख रहा हूं श्याम गोप रूप। गोप रूप में जो श्याम अब उसी श्याम थी मैं देख रहा हूं, हाथों में बंसी है, सिर पर मोर मुकुट है, पीताम्बर की काछनी है, यहाँ पर पीताम्बर लहरा रहा है, होठों पर मुरली है, वो ऐसा सुंदर मैं रूप आपका देख रहा हूं। तुम्हारे सम्मुख देखी कंचन पंचाली, उसके सामने कह रहे हैं किंतु आप कृष्ण ही हैं, कृष्ण के रूप में गोप के रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं अपने बीच में और आपके बीच में आपके ऊपर में एक कोई छाया है, वो छाया क्या है कंचन पंचालिका, पंचालिका माने पुतल, एक सोने की पंचालिका माने मूर्ति है, वो सोने की मूर्ति कौन है तार कुमार सर्वकांति घाटा, वो इतनी सुंदरी है जिसका हद नहीं। कृष्ण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, वे मदन मोहन है, इतने सुंदर है कोटि कोटि मदन कामदेव लज्जित हो जाए उनके रूप को देखकर, किंतु श्रीमती राधिका जी और सुंदर है, जो वो भी उन पर मोहित हो जाते हैं मुग्ध हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपके सामने ही मैं देखता हूं एक गौ कांति से भरी एक सोने की पंचालिका मूर्ति है, बहुत ही अद्भुत सुंदर, कहां से प्रकट देखी स्वंशी वदन, उसमें मैं प्रकट देख रहा हूं कि आप वंशी वदन कृष्ण ही है श्याम है, और वो श्यामा नाम की किंतु है कैसी सोने की मूर्ति जैसे होती है, कैसे सोना जो पिघलाया गया हो अभी तुरंत पत्थर थल एकदम पीला का भाव गौर वर्ण का भाव, उसे आपकी सारी कांति समस्त सारे अंग पैरों से पैर वस्तक्षल से वस्तक्षल शीर से मुखारविंद से मुखारविंद हाथों से हाथ समस्त अंग ही उसके जो किशोरी है श्यामा जी है गौरी, उस गौरी के अंगों से और उसकी कांति से आप कहां से प्रकट देखी स्वंशी वदन, उसमें मैं देख रहा हूं रामानंद कह रहे हैं उस सुंदर गौर कांति वाली राधिका के पीछे सोने की जो मूर्ति है उसके वंशी वदन है, नौ किशोर नटवर वंशी धारी बहुत ही सुंदर, नाना भावे चंचलता है कमल नयन, और आप जो श्याम सुंदर हैं आपके नयन कैसे हैं चंचल कमल के समान नयन है, नयनों में कमल जैसी समस्त माधुरी माया है उनमें, और चंचल है मानो इसलिए चंचल जैसे हिरणी का बच्चा छोटा सा हिरणी, चल चल नेत्रों से इधर उधर देखती है, भय से दीप होकर। तो यहाँ पर मानो किसी को खोज रहे हैं, इसलिए चल चल इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। यही मत नान कुमार देखी है चमत्कार। अकपट कह प्रभु कारण निहार, मैं ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। क्यों नहीं? कृष्ण लीला में उन्होंने कृष्ण को देखा है और राधा जी को भी देखा है, किंतु ऐसा रूप नहीं कभी देखा जो दोनों मिलकर के एक हो गए हों और श्याम कांति ढक गई हो गौर कांति के द्वारा। कोई चीज किसी चीज से ढकती है कब? कब ढकेगी?
ज्यादा होगा
जिसका प्रभाव अधिक होगा वो दूसरे को ढक लेगा। और शक्ति ही शक्तिमान को प्रकाशित करती है। राधा जी कृष्ण के स्वरूप को और जो कुछ उनकी भगवत्ता है राधा की ही कारण है। इसलिए राधा जी की कांति से उनकी कांति श्याम कांति भर करके एक ऐसे अपूर्व दोनों का मिलन, उधर नीलमणि नील जैसी आभा, इधर स्वर्ण कांति, दोनों मिलकर के एक तीसरी कोई अद्भुत कांति बन गई। इसी का नाम है रसराज महाभाव। ने पूछा जी से ये कैसे हुआ बतलाइए तो, मैंने तो आपको श्याम के रूप में भी देखा और आपकी श्यामा जी को भी देखा, किंतु ये अद्भुत ये दोनों का मिश्रण ये कैसे ये हुआ, बतलाइए आप कौन हैं? प्रभु कहे कृष्ण तुम्हार गाढ़ प्रेम भर है, तुम्हार स्वभाव यही ज्ञानी हो निश्चय, प्रेम प्रभाव यही ज्ञानी हो निश्चय। महाप्रभु ने हंस दिया, ये तो हमारे भाव को समझ लिया जी, मैं कौन हूं, मैं वही श्याम हूं, राधा जी के भाव और कांति को लेकर के आया हूं, ये समझ गया। इसलिए थोड़ी सी उन्होंने मुस्कुरा दिया, ये चोरी की कलई खुल गई, इसलिए वो थोड़ा सा हंस दिए और कह रहे हैं मैं तो जो हूं तुम देख रहे हो, जो मैं ब्राह्मण सन्यासी हूं, मैं तो वही हूं, किंतु तुम्हारा कृष्ण के प्रति अबाध निष्ठा है, इसलिए तुम सर्वत्र जिधर ही देख रहे हो उधर श्याम 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 देख रहे हो। मैं बदला नहीं, हमारे अंदर में भी और जहां जहां तुम्हारा नेत्र पड़ा सबको तुम श्याम मई देख रहा है। क्यों? प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है। महाभागवत देखे स्थाव जंगम, जहां तहां हत्तार श्री कृष्ण को पुष्पुरा स्थावर जंगम में देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव इसको। साधारण रूप में एक ऐसी कहावत है कि चोर सबको चोर ही देखता है, काम का प्रसन्ति काम मायन जगत, चोर सबको चोर ही देखे, जितने देखेगा सभी चोर बैठे हैं। और जैसी जो कामी पुरुष है वो सर्वत्र नारीमय कामनीमय, ये ऐसा जो जैसा है जाति रही भावना जैसी हरि मुहूर्त देखा दी, वैसा ही देख लिया। तो इसमें जिसको जो देख रहा है उसकी ये ऐसी बात नहीं है, वो तो प्रेम जिसके प्रति हो जाता है, जिसके प्रति भावना रहती है, वैसा ही आदमी देखता है। जैसे रुक्मिणी शतभामा कृष्ण के प्रेम में रो रही थी, तो रात में उन्होंने देखा कि कुरली नाम का एक पक्षी भी विलाप कर रही है, तो वो कुरली से पूछती हैं, अरे प्यारे सखी, जैसे हमारे पति का वियोग हो गया तो तुम्हारे पति का जरूर वियोग होगा, हो गया नहीं तो तुम रोती नहीं, तुम इतनी जब रो रही है तो जरूर तुम्हारा पति का वियोग होगा, जैसे अपनी जैसी देखते। ठीक ऐसे ही भगवान का भजन करते 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 निष्ठा से रुचि आसक्ति भावावस्था अंत में प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर ऐसा है। उत्तम महाभागवत प्रहलाद महाराज जी से आरंभ करके और उसके ऊपर वाले जितने भी वो ऐसा ही थे। कौन है तो ऐसा ही हो जाता है। कृष्ण प्रेम का नशा ऐसा चढ़ जाता है कि सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दर्शन। और यदि कोई राधा पक्ष कोई गोपी का भाव लेकर के भजन करता है तो वो कैसा देखेगा, सब राधा मैं कृष्ण सर्वत्र, जैसे ब्रह्मा ने सर्वत्र ही कृष्ण कृष्ण देखा, दादू सुंदी जी ने राम मैं सब जगत को देखा, सर्वत्र राम ही राम देखा। या पार्वती जी जी की कथा जो मैं कहता हूं वो ऐसे ही एकदम राम 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 सर्वत्र देखी। तो ये महाभागवत लोग भजन करते करते जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो वो निष्ठा निश्चलता आ जाती है, स्थिरता। इसके बाद में भजन करते 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 उसमें रुचि हो जाएगी, रुचि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आसक्ति होगी। यही आसक्ति पहले भजन में भजन के प्रति और फिर
भजन के प्रति हो
जाए, तब फिर भगवान की बड़ी इस पर दया हो जाती है, तब उस जगत से वो भाव उनके परिकरों में से इनके यहां स्फूर्ति हो जाए। वह भाव इस जगत का कोई मन की कोई कल्पना नहीं है, जो मन की कल्पना से ऐसा हो जाएगा। अभी हम रोते हैं हंसते हैं मन की स्थिति के अनुसार, कोई मर गया तो रोते हैं, कोई बच्चा जन्म ले लिया तो खूब हंसते हैं, हंसने की बात होती है, हंसते हैं रोने की बात होती है, अपने मन की ये सब भावना है। किंतु वह जो प्रेम है वो जगत की चीज नहीं है, भगवान के परिकरों में से यहाँ पर आदित होता है, तो वो यथार्थ भाव है। वह भाव उत्पन्न होने पर सर्वत्र ही अपने इष्ट देव की मूर्ति को देखेगा। प्रहलाद महाराज जी से पूछा कंस ने, अरे तू डरता नहीं है, तुमको आग में जलाया, तुमको विष खिलाया, पहाड़ों से गिराया, समुद्र में मैंने फेंकवा दिया, हाथियों के पैरों के नीचे दबाया, ऐसा कोई उपाय नहीं, सांपों से कटवाया, विष दे दिया, तू मर नहीं रहा, तू तो देखते कि अद्भुत व्यक्ति, तो तुम कोई इतना निर्भय तुम कैसे हो गया, तुम्हारा बल कहाँ है। तो उन्होंने कहा जो सबका बल है, जो सबका सहारा है, वह भी मेरा सहारा है, मैं उसी के बल से सर्वत्र निर्भय हूं, इसके भगवान के बल से, और वो सब में है अंतर जाने के रूप में, कोई अनुभव करता है कोई करता नहीं, मैं तो उस प्रभु को सर्वत्र ही देखता हूं, समस्त जीवों में उस प्रभु को देखता हूं, और उस प्रभु में समस्त जीवों को दर्शन करता हूं। अभी ये श्लोक आएगा, सर्वभूतेषु जः पश्यत् भगवद्भावम् आत्मना भूतानि भगवतात्मनेत भागवत। भजन करते करते भगवान की उपलब्धि, ये झूठ मूठ का कि कोई कल्पना नहीं है, जो भगवान है भजन करने से ऐसा होता है। पहली स्थिति में संदेह लोगों को रहता है, अच्छा भगवान का भजन करते हैं तो हमारा अमुक व्यक्ति क्यों मर गया, लोग ताना देंगे ये इतना भजन करने वाला या करने वाली और उसका यह प्यारा व्यक्ति चला गया, ये कैसे हुआ क्यों, वो सब पूछा देगा, ये सब साधुता इत्यादि जितने सब ठकोस ले, ये एक पेट पालन करने का पैसा रोजगार करने का एक अंदा है, दूध मुख को संपना दी, तो आखिर वो क्यों मर गए, वो क्यों मर गए, महात्मा जी जो सबको सांत्वना दे रहे थे जो भगवान, तो वो क्यों मर गए, अरे वो तो समझते नहीं है ये कपड़ा है, बुद्धिमत्ता यही है कि पुराना फटा होने पर उसको बदल दिया जाए, उनके समझ में ये कभी नहीं जाता। तो भगवत भक्त जो होता है तो साधन करते 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 जब महाभागवत चला जाएगा, पहले कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी, तो फिर वो निर्भय हो जाता है। मध्यम अधिकार से ही निर्भय होने लगता है, तब ये सांसारिक विपत्तियों के लिए और परिवर्तनों के लिए उसको कम फिकर चिंता कुछ भी नहीं रहता, एकदम स्थिर हो। जैसे भीष्म पितामह जी, व्यास जी, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, बहुत तरह से लोग समझा रहे हैं, व्यास जी भी आए उनको समझाए और भीष्म पितामह जी ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया और धृतराष्ट्र को भी बहुत समझाया, उनके तो नाती पर नाती अपने हैं, ये पांडवों की समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो समझेंगे, बहुत समझाया किंतु उन्होंने माना नहीं, जिस समय माना नहीं और ये हमारे भीष्म पितामह जी अस्त्र लेकर के खड़े हो जाते, देखो ये तुम लोग क्या करता है, पांडवों को देना पड़ेगा, ये मेरा राज्य है, तो क्या होता
देने के लिए बात सर,
वो सबको नाको चने चबवा करके और उसी समय में सब कुछ उनको दे दे, कुछ लोग नहीं कर सकते थे, किंतु उन्होंने जानबूझ करके भी कुछ नहीं किया, बल्कि दुर्योधन की तरफ से भी गड़ा, ये महाभागवत व्यास जी अंतर्जामी सब कुछ जानते हैं, जब उनको तीन पुत्र भी दे दिए, विदुर, धृतराष्ट्र,
पांडु
और पांडु, तीन पुत्र भी तो अपनी दृष्टि से ही उनको दे दिया, उनको तो पुत्र था नहीं विचित्र वीर्य को, किंतु दे दिया, तो जो जन्म देने में संभव समर्थ है, इच्छा कर देते ना अभी संपादे जाओ अभी तुम मर जाते, बस दुर्योधन इत्यादि सब मर जाते, युद्ध इत्यादि सब अपने आप बंद हो जाता, सब काम हो जाता, किंतु अपने योग विद्या का अपनी शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया, ये लोग जानते हैं जैसा कृष्ण भी स्वयं भगवान होकर के भी कुछ क्यों नहीं किया, किसी ने जगत का कल्याण था वो समझते हैं, जो कैसे कल्याण होगा, इसने महाभागवत एकदम स्थिर रहा, भगवान के प्रति विधान में संतुष्ट रहा। सुनते हैं एक कोई संत थे, नौका से जा रहे थे, शाम का समय था, आकाश में बादल गिरे, धीरे धीरे एकदम अंधकार सा हो गया, थोड़े थोड़े बूंदी बांदी भी आरंभ हो गई और बड़े जोर से आंधी चली, नौका तो पहले छूट गई थी, नौ नदी चौड़ी थी, बीचों बीच में गई और साथ ही साथ में बड़ी जोर से अंधड़ आया, नाव डगमगाने लगी, कभी किधर कभी इधर, और नाव में आदमी भरे थे, उसमें महात्मा जी भी बैठे हैं, नाव इधर से पानी में जिधर से पानी लेती है अब फिर इधर करवट बन जाती, अब गए सबके प्राण सूखेंगे, अब गई नाव, महात्मा जी जब देखा जे नाव डूब रही है तो उन्होंने कमंडल उसे जर भर करके और उस नौका में भरना, लोगों ने कहा कि क्या ये साधु है न, ये क्या है, नौका एक तो अपने आप डूब रही है और नौका में पानी भर करके दोबारा आए, बड़े लोग सब बिगड़ रहे हैं किंतु वो अपने सुध में है, वो किसी की तरफ देख नहीं गए, वो पानी भरते ही चले जाए, भगवान की कृपा से नौका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, इतने में आकाश छट गए, बादल छट गए, वर्षा भी थोड़ी सी, नौका भी अब किनारे पर लगने वाली, नौका भी अब सीधी हो गई, अब महात्मा जी ने पानी उलीचना आरम्भ किया, नौ मछ लेकर के बाहर भेजना, लोगों ने कहा ये पागल है और कुछ नहीं, अरे अब पानी फेंकने की क्या जरूरत, नौका तब लग गई अब तो डूबेगी नहीं, अंत में महाराज जी से कोई एक श्रद्धालु व्यक्ति ने पूछा जी आप नदी में पानी भरने लगे नौका में अब फिर उसको खाली कर, ऐसा क्यों, अरे भाई प्रभु की इच्छा थी या नौका डूब जाए, तो मैंने सोचा कि भगवान की इच्छा के लिए हम भी उसका उसकी सहायता कर दे, प्रभु की प्रसन्नता ही सब कुछ है चीज, इसलिए जब नौका डूब गई तो मैंने सोचा कि और भी सहायता करते डूबा डूब जाए,
और जब देखा कि प्रभु की इच्छा नहीं है, बादल छट गए, हवा भी बंद हो गई और नौका भी निकट आ रही है, तो देखा कि प्रभु की इच्छा है जो नौका लग जाए, इसलिए मैं पानी भर करके प्रभु की इच्छा, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं अपने प्रभु का गुलाम, उनका उसके इच्छानुसार मैंने कहा। ऐसे महापुरुषों को संसार के किसी भी विपत्ति से उद्विग्न नहीं, ऐसा ही भजन करने वाला निरुद्योग होकर के तो बतलाया ना, भाव का लक्षण ही नहीं बतलाया, शांति अदक्ष काल, शांति माने क्या, समस्त विश्व की विपदाओं के आने पर भी वो एक निशुद्ध नहीं, क्योंकि प्रभु का हमारे अंदर में वो जो इच्छा करेगी वो होगी और वो हो करके रहेगी, तो क्यों नहीं उसमें प्रसन्न रहा जाए। इसलिए संत लोग भी ऐसे ही वो सर्वत्र अपने हृदय को देख, प्रहलाद महाराज जी क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सर्वभूतेषु यः पश्यत् भगवत भावम आत्मनः, आत्मनः माने अपना भगवान के प्रति जो भाव देखते हैं, वो देखते हैं कि संसार के सब लोगों में वही भाव है। जैसे निशिंग देव की आराधना प्रहलाद महाराज का, वो देखेंगे ये सब लोग निशिंग देव की उपासना करते हैं, निशिंग मूर्ति को सर्वत्र देखते हैं। हनुमान क्या देखेंगे, वो देखेंगे सारे विश्व के लोग राम की उपासना करते हैं, सर्वत्र वो राममय सिया राममय, वो इस रूप में देखेंगे, उनकी वो देखने से इष्ट देव की स्तुति होती है। अरे और तो क्या, निर्जीव वस्तु एक मयूर का पंख है उसको, और की तो बात क्या, हम ही लोग जब देखते हैं, यदि मिट्टी में पड़ा हुआ है कहीं नारी और मोरी के पास भी हम यदि देख लिया तो क्या करते हैं, झट उठा लेकर के झाड़ झूठ कर सिर पर रख लेते हैं। एक तुलसी का पत्ता सूखा हो या कच्चा हो कहीं भी पड़ा हो तो हम लोग क्या करेंगे, झट उठा करके सिर पर रख लेते, क्यों, कृष्ण लीला की स्फूर्ति होती, कृष्ण की स्फूर्ति, इसलिए महाभागवतों को संसार चल नहीं सकती है, और जो चलने वाली है
जंगम
वो चलने वाली, उन सब में अपने इष्ट देव की मूर्ति को देखते हैं, ये शरीर नहीं देखते हैं। ब्रह्मा जी कहीं प्रभास में जा रहे थे, एक सुअर को देखा, सुअर को देखते ही कहा ये हाय हाय, अरे इंद्र तू कैसे इसमें आ गया गंदे शरीर में, तू हमारे साथ चलो स्वर्ग में, तो दो चार बार करने पर सुअर ने मुंह उठाया उनकी तरफ में, वो अरे तू इंद्र है, तू सुअर नहीं है, तू हमारे साथ में चल, किसी प्रकार से राजी नहीं, बहुत कुछ कहा तो भी राजी नहीं, तो ऐसे नहीं जाए। सुअर के जितने बच्चे थे बच्चों को मारना आरंभ किया, तो वो घिघियाने लग गए, एक एक बच्चा मर रहा है और घिघिया रहे हैं बच्चों के, और वो मार करके ऊपर उठ जाते हैं अंतरिक्ष में, उनको पकड़ नहीं पाता, मारने की चेष्टा भी करता है। अंत में जब सब बच्चे मर गए, अब चलेगा तो नहीं हमारी स्त्री है, फिर बच्चे हमारे जैसे के तैसे पूरे हो जाए, उन्होंने स्त्री को भी पकड़ करके पिछले पैर और मार दिया, अब चलेगा, अरे कितनी स्वर्गियां जूती जाएंगी, फिर मेरी पत्नियां जूती जाएंगी और बच्चे हो जाएंगे, नहीं चलोगे तो नहीं, तो उन्होंने पानी हाथ में लिया और प्रक्षण करके उस पर मंत्र पूछ करके होती साथ ही साथ, अरे मैं इंद्र और मैं इस सुअर शरीर में चारों तरफ में टट्टी लगी हुई है, मल मूत्र लगे हुए हैं, और मैं इस तरह से घूम रहा हूं, बच्चों को अपना बेटा और लड़की और इन सुअरियों को अपना मैं पत्नी के रूप में देता हूं, हाथ जोड़ करके उनके सामने प्रभु अब आप कृपा करिए शरीर छूट जाए, अब चलेगा ठीक, बस पानी खाया प्रक्षण किया और शरीर छूट गया, और जिन लोगों को विश्वास नहीं है इन कथाओं पर, शास्त्रों पर, वेदों पर, पुराणों में, यदि हम लोग भजन कर रहे हैं कुछ कुछ, किंतु इतने तभी सामर्थ्य है नारद और व्यास या उन लोगों के समान रूप से सनातन के समान तो भी नहीं हुआ, या महाप्रभु या भी वे कौन श्यामानंद के शिष्य
रसिकानंद
इत्यादि, पानी उठाया और हाथ छोड़ दिया लोगों का, बस
हाथी के ऊपर हाथी
ऐसा तो नहीं, तो अभी हम लोग प्रश्न करते दिखला दे, ये देखो संसार क्या है और ये भगवान की भक्ति और उसका फल क्या है ये दिखला दे, किंतु ऐसे हैं लोग दिखला दे, अपना सामर्थ्य या स्वरूप अपना प्रकट नहीं करते, फिर तो ये समझो ये कहां ये घृत नरक है ये संसार, और कहां अमृत का खान वो बैकुंठ धाम गुरु वृंदावन है जहां अमृत ही अमृत रस ही रस, ये जगत में सुख और शांति का जगह नहीं है, वही हमारा पूर्व स्थान है, वहीं से हम लोग विचित होकर के इसमें आ गए और इसको अपना मान करके उसी में भटक करके चलते हैं। तो महापुरुष जो होते हैं महाभागवत एक हिरण को देखा, हिरण को देख करके वो कहते अरे ये हिरण नहीं, अरे ये तो ये है भरत है, देखा ना कृष्ण ने एक गिरिकलाश गिरगिट को देखा, जितने लोग थे उन्होंने सोचा कि ये गिरगिट है और उन्होंने गिरगिट नहीं देखा, यानी ये तो मृग महाराज हैं हम लोगों के पूर्वज वाले, तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने पैर से उनको छू दिया और उनका शरीर से वो अलग होकर के देवता के समान प्रकट होकर के कृष्ण की परिक्रमा की और निकल करके प्रणाम करके और फिर कृष्ण के सामने उनसे वार्तालाप करवाया कृष्ण ने और अपने पुत्रों को शिक्षा दिया और नातियों को, और इसके बाद उनको अपने स्थान में ले लिया। तो ये महापुरुष लोग होते हैं, प्रत्येक शरीर में हमारा एक रूप है, उस रूप में भगवान दिखते हैं, यदि भगवान नई शरीर में रहे कहीं नहीं रहे जड़ में या चेतन में, तो वस्तु की सत्ता नहीं हो सकती, उन्हीं की सत्ता से प्रभु की सत्ता से ही शक्ति सत्ता मनुष्य जन्म इसीलिए हुआ, उनको पहचानो, शरीर हमारा पति नहीं है, शरीर हमारा पुत्र नहीं है, ये तो मट्टी का एक बस, इसे हमारा इस चीज को रियलाइजेशन कराने के लिए भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया, उसमें बुढ़ापा दिया, युवावस्था में इतना तेज ये शरीर दिन भर काम करता है, लोगों का प्रभु अपने को समझता है, और वही विश्व विजयी गामा नाम सुना बन विश्व विजयी गामा जो समस्त विश्व को ये कुश्ती में हराया था, और अंत में वो अस्पताल में पड़ा हुआ कराता कराता एक ग्लास पानी अपने हाथ से नहीं पी रहा, ऐसा निबल हो जाएगा सबके लिए, जो 10-10 आदमी को पकड़ करके पहाड़ों पर उठाता था, अब वो खुद एक सीढ़ी भी अपने आप नहीं चढ़ पाता, दूसरों उसको एक सीढ़ी इस मकान की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं उतारते हैं बस, ये अपने को निर्बल समझे असहाय समझ करके उस प्रभु का शरणागत हो, इसीलिए सब चीजें तो वो ऐसा ही देखता है, क्या थावर और जंगम को देखता है, पेड़ पौधे और ये सब चीजों को देखता है, पशु पक्षी मनुष्य के शरीर को, किंतु उनके शरीर को नहीं देखता, उसके भीतर आत्मा क्या है उसको वो देखता है, सर्वत्र है तहा इष्ट देव स्फूर्ति, ये सियाराम मैं सब जग जान करो प्रणाम जोर जुगना, इसका अर्थ हम समझते कि 99% लोग बोल समझते हैं, बोल समझते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामायण में इन चीजों का निराकरण भी दिया गया, तुलसीकृत रामायण में श्रीमद् भागवत में इसका निराकरण दिया गया, किंतु उनके समझ में आता नहीं, बस यही सियाराम सब जग जान, ओ मैं तो नहीं लेते सिया राम मैं सब जगत जानी, उसको इस तरह से समझना चाहिए, किंतु वो नहीं, वो क्या कहते हैं सियाराम और सब जगह जाने सियाराम को देखा, मैं को नहीं समझ पाते, उसको मैं पर विचार करना चाहिए। मैं मानी क्या, जैसे जल है, वर्षा हुई, यमुना में बाढ़ आई, अभी चार वर्ष पहले की स्थिति कल्पना कीजिए, इस बार उस बार सब एक हो गया, मथुरा में भी छतों तक पानी पहुंच गया, उधर नीचे की तरफ में यहां तक पानी आने वाला था, ये बहुत ऊंचा टीला के ऊपर है, उधर स्वामी में घाट का भाग सब डूब गया और उधर में चारों तरफ दुर्वासा और ये सब डूब गया, केवल दो एक पेड़ दिखाई दे रहे हैं बस पीले पीले के। उस समय कहा जाता है कि आज जलमय हो गया, किंतु जहां पानी उतर गया बस पेड़ पौधे सब कुछ जैसे के तैसे निकल आए, तो जब बाढ़ आई उस समय नहीं पेड़ पौधे और ये सब चीजें पानी नहीं हो गया, पानी का अस्तित्व रहते हुए भी इन चीजों का भी अस्तित्व था, उसमें थोड़ा सा छिप गए पानी पानी दिखता। ऐसे ही इस जगत को देखने वाले वे भी महाभागवत लोग सब समय कृष्ण को ही या राम का भक्त राम मैं देखता है, सब समय इनकी स्मृति यही आती है राम की स्मृति, कोई भी चीज देखा जैसे महाप्रभु जी पुरी में उधर में गए, वही कहीं बगीचा मिल गया तो देखा था ये वृंदावन, समुद्र देखा तो माना ये जमुना, ऊंचा किला देखा ये गिरिराज गोवर्धन, यही प्रेम का स्वभाव होता है, अपने इष्ट देव की सर्वत्र ही स्तुति होती है, सब में अपने इष्ट देव को देखता है, अपने में ही दूसरों में भी और समस्त जीवों को भगवान के स्वरूप में देखता है, किस रूप में ये हमारे इष्ट देव ही इनके आराध्य हैं, इस रूप में। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक और भी उदाहरण के लिए दे रहे हैं, महाप्रभु जी वनलता सर्व आत्मनि विष्णु वैल्यंत ये पुष्प फलाज्ञा प्रणतभार विकता मधुधार प्रेम अभिष्ट तनु बब्रिशुष्म, ये जुगल गीत का इसको करे हैं कृष्ण गोचारण करने के लिए वन में, वहां के गोपियां यहां से देख रही हैं घर में रखते हुए, वो अलग अलग घरों में बैठी हुई अलग अलग गोपियों की एक एक अपने अपने गीतों की अलग अलग सभा, गोपियां जब कृष्ण चले गए तो बिना बातचीत के तो रहेंगी नहीं, स्त्रियों का ऐसा स्वभाव ही है, दो भी रहेंगी तीन रहें वो जरूर बात करेंगे, तो गोपियां बात करें किसकी बात करेंगी, अपने प्रिय बात करेगी, तो उनका प्रिय कौन है कृष्ण, कृष्ण की बात करती है, श्याम की ही बात करती है, तो श्याम की बात सुनने लग गई है, तो कह रही है कि श्याम अपनी शाखाओं को लेकर के गोचारण करने के लिए गए, वृक्ष जितने हैं श्याम को देख करके एकदम आनंद में भर गए, उनमें धीरे धीरे कुछ उनमें पुलक होने लगा, उनका शरीर पुलकित होने लगा, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी और सिर झुका करके और कृष्ण को कोई प्रणाम इत्यादि, दो भाव हैं, एक शुद्ध माधुर्य भाव और एक है ऐश्वर्य भाव युक्त उनका दर्शन, यहां गोपियों के भाव में शुद्ध माधुर्य भाव, कोई जिनमें कोई भगवत भाव है वो देखेंगे क्या, साधारण वो देखेंगे, पंखा भी चला दो तो। जो साधारण साधक है वो तो कुछ नहीं देखेगा, जो भाव भक्त और महाभागवत हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक ऐश्वर्य भाव और एक महाभूत भाव,
मातृ के भाव माने गोपी हो जाए। जो ऐश्वर्य भाव वाले देखेंगे, जो उनके अंदर में विष्णु है, नारायण है, या कृष्ण भी नारायण है और उनमें सर्वैश्वर्य है, पेड़ पौधे जितने हैं सब उनके दास। पेड़ पौधे को पेड़ पौधा न देकर के वो सोच रहे हैं ये कृष्ण के सखा है, ऐश्वर्य भाव, या उनके दास हैं। जब कृष्ण को उन्होंने देखा तो माने अपने भावों की अपनी व्यंजना करने के लिए, अपनी व्यक्ति करने के लिए उन्होंने वो जो पुष्प है ना, पुष्प माने अपने हाथों से, हाथों में पुष्प की वो भर दी, अंजलि भर दी, माने उनकी डाले छूट गई जो फूलों से लदी हुई है, और कृष्ण जा रहे के चरणों पर वो पुष्प आते हैं। ये मानो ये सब भक्त हैं और कृष्ण को भगवान समझ करके आराम कर रहे हैं, पुष्पों की डाली उनके चरण और आंखों से आंसू की धारा बह रही है अपने इष्ट देव को देख करके, अब रहा नहीं गया, भाव में विभोर हो गए और साथ साथ में पुलकित हो गए। पुलकित माने क्या?
पुलकित गया,
पुलकित माने वो नए नए पत्रों का अंकुर होने लगे, अभी अंकुर और किस चीज का अंकुर, वो जो कलियां है ना फूलों की, वो कलियां थोड़ा सा अब कलियां अंकुरित होने लगी, पहले तो गोल से कड़े के रूप में रहती, और फिर धीरे 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 उसमें से अगला भाग थोड़ा सा
खुलने,
वो अंकुर जैसे, ये सब सारे शरीर में उनका अंकुर हो गया और मधु की धारा गिरने आंखों से प्रेम की धारा निकलेगा। ये तो साधारण भक्तों का जो महाभाव है, वो कौन से सनक सनंदन सनातन इत्यादि प्रहलाद महाराजा भीष्म पितामह इत्यादि लोग इस रूप में देखे और गोपियां किस रूप में देख रहे हैं, बना लता पर वो आत्मनि विष्णु माने कृष्णम व्यंजन तो पुष्प फला गोपियां का भेद देख रहे। अब हमारे जैसी भी आज हम इनके जीवन में हम और कृष्ण जैसे मिल जाते हैं, मिल गए तो अपने भावों को भी व्यंजना करने के लिए, भी व्यक्त करने के लिए मानो आज ये पुलकित और रोमांचित होकर के आंखों से इनकी धारा रही है, मानो ये फूल फलों से एकदम लग गए, अपने कांत को देखा ये कांत भाव से देख रहे, ये वृक्षों को भी देखेंगे किस रूप में, ये कांताएं हैं हम जैसे कृष्ण की कांताएं हैं, वो गोपियां हैं, ऐसे ये जितने भी लताएं हैं पुरुषों को नहीं देखा, लताओं को देखा अपने और उनके पतियों को आकर वृक्षों को उनको पति के रूप में देखा, जैसे एक हिरणी को गोपी देखती है, देखकर क्या करती है, आया मैं हिरणी हूं, और हिरणी होती तो क्या होता, हमारा पति जो हिरण है कौन,
कृष्ण सारी
हमारे पीछे चलता, अरे तुमको कोई भय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैं तो हूं ना, चलो देखो कृष्ण, कृष्ण बंशी बजा रहे हैं, हम नेत्र से एक होती देख रहे हैं हिरणी, और हिरण को उसका अनुगामी भी बतला रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है किस पर, हिरणी पर, अपना और दोनों का भाव एक समान बना रहे अपने जैसा भी, इसलिए पुरुष में तो आरोप होगा नहीं, स्त्री जाति में आरोप, इसलिए हिरणियों को अपने समान हो, कितनी ये धन्य है, ये बिना किसी विघ्न बाधा के कृष्ण के निकट पहुंच जाती है और प्रणय की भिक्षा मानो आंखों से कृष्ण से मांग रही है, और उनका पति पीछे पीछे रहता है, कोई चिंता की बात नहीं, डरो मत, लज्जा की बात नहीं, मैं तुम्हारा की पास पास हूं, कितना इनका होगा, और हमारे पति कैसे हैं, हमारे ठीक यदि सुन लिया इसने श्याम को देखा है, जो कहां थी तू, पैर तोड़ देंगे यदि घर से कहीं उसको दे दस देगा तो वो काला नाग है वो जानती नहीं। आईने से घर से मत निकलना। कहां गई थी? श्याम को देखने के लिए गई, बस उनकी यही। तो ऐसे याद यहां पर ये जो यहां करें लताओं को पहले कहा वन लता और तरुओं को देखा उनके पति के रूप में और इन लताओं का प्रेम देखा अपने जैसा ही मधुर भाव कृष्ण के प्रति और वो कह रही है कहो अपने भावों को व्यंजना करने के लिए ये पुष्प और फल इत्यादि ये नहीं है तो प्रेम का भाव है। अंकुर इत्यादि जो निकल रहे हैं नए नए पत्ते और कलियों का जो ये निकल रहा है ये सब अंकुर अंकुर मानी यहां का ये क्या कृष्ण की कथा सुनने से कोई प्रिय भक्त लोग होते हैं पुलकित हो जाते हैं। आज आपने प्रियतम कृष्ण को देखकर के ये पुलकित हो रहे हैं भाव से। ये फल क्या है? प्रेम रूपी फल है। आज ये पुष्पित और फलवित हो गए फलवित हो गए फल से युक्त कृष्ण के सामने उसका उपहार करें अपने हृदय को मान दे रहे और रो रही है किसी भी प्रियतम को लेकर के अपराह नहीं गया प्रेम के साथ में सुख पूर्वक ये रोने लगे प्रणत धार वितपा मधुधार प्रेम रहिष्ट तरुण वक्र सूष ओह कितना ये सौभाग्यवती लताओं को देकर आप इनके साथ में ये वृक्ष भी वो लताएं कैसी हैं वृक्षों को लपेट करके ऊपर तक से लिए मानो पत्नी ने पति का आलिंगन करते हुए भी कृष्ण को देकर के प्रेम में भर गई और ये भूल गई है हमारे पति को हमने अंक में कर रखा तभी कृष्ण से प्यार करता इस तरह से ये पत्नी कौन कर रही है गोपी है। अरे पेड़ में वो भाव है न लता में वो भाव है वो तो अपने आप फल फूल रही है तीन तीन की ऐसे ही भावना तो ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं ये मेरा गुण नहीं मैं तो वही गौर हूं और ये सन्यासी हूं क्या चैतन्य कृष्ण मेरा नाम है मैं वही सन्यासी हूं मैं पहले जैसा था वैसा ही हूं किंतु आप जो ये देख रहे हैं विशेषता हमारे वजह से नहीं अपने कृष्ण प्रेम की वजह से सर्वत्र आपकी इष्ट देव की मूर्ति कृष्ण की तुलना हो रही है मेरे अंदर में कृष्ण और सामने में जिन्हें कहां से राधा जी को आपने देख लिया मैं इनकी कांति से उद्भासित हो रहा हूं ये भी आपने कैसे देख लिया राधा कृष्ण तुम्हार महा प्रेम जहां तहां राधा कृष्ण तुम्हारे स्फुर जहां तहां ये राधा कृष्ण की तुम्हारी स्फूर्ति हो एक किरण जाला दौड़ता क्या देखा ये कृष्ण के किरण ने कृष्ण की तरफ जाना ऐसे ऐसे सब कोई भी चीज हो बस उसी की राय कहे प्रभु तुम्हें छड़ो भाव चूरी मोर आगे रूप ना करो हर चूरी महाप्रभु जी को कहें राय रमन प्रभु अपनी चौकाई चतुराई और धूर्तता या मेरे साथ में धूर्तता पकड़ता आप मत करें और अपने भावों की चूरी करके हमसे मत छिपाओ अपने को क्यों अरे मैं भी तो कौन हूं हमारे यहां की चोरी नहीं चली राधिकार भाव कांति करिया अंगीकार आपको कृष्ण ही है देखा कृष्ण रूप में आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई आपने सब प्रकार के रसा साधन किए प्रेम का विषय बनकर और गोपी सखा माता पिता दास इत्यादि के रूप में वो लोग सब इसके आश्रय हैं प्रेम के पांच प्रकार के आश्रय हैं संग दासत्व वात्सल्य और पांच प्रकार के आश्रय पांच प्रकार से ही कृष्ण की सेवा की जा सकती इसमें से करें हैं कि आप जब तक ये चाहते थे ये राधिका जी को हमको देख करके इतना आनंद क्यों होता है जो लोग हमको दर्शन करते हैं सबसे अधिक आनंद किसको अनुभूति होती है राधिका के, सबको होता है, किंतु एक पशु पक्षी के फतंगों को कृष्ण को देखने से होता है, किंतु सबसे अधिक होता है राधिका। क्यों? इसलिए कि उनमें महाभाव की अवस्था है, मादन होता है और किसी में है नहीं। कृष्ण ने सोचा लीजिए मादन भाव हमको हमारा राधिका वाला हमारे अंदर में आया, तो मैं समझ सकता कि मैं कितना मधुर कितना सुंदर हूं, राधिका जी को क्या सुख होता है, तब मैं समझता जैसे मुझको क्या देख करके उनको क्या सुख होता है। ये सब चीजें उनका माधुर्य हमारा कैसा है, ये सब चीजें माधुर्य। इसलिए राधिका जी का रूप और भाव दोनों को चूरी किया, चूरी किया मैंने क्या, राधा जी को जानने नहीं दिया और उनके भावों को ग्रहण किया। इच्छा तो थी किंतु ग्रहण नहीं कर सकते थे। ग्रहण कब हुआ? जब रामानंद से वार्तालाप हुआ और रामानंद ने उनको वह भाव दिया महाभाव, उनमें संकल्प कराया, तब ये उनको ये भाव था। इसके बाद में कुल में आए और बकुरिया में रहकर के सब जब तक कि वो भी भाव नहीं होगा इनको समझना बड़ा भारी। इसलिए कृष्ण को जब ये समझना हुआ ना, शंकर जी को तो छोड़ दीजिए जो गोपी हुए, उनके तो समझ में गोपी भाव आने पर भी नहीं, तो गोपी रूप होने पर भी, किंतु कृष्ण जी ने राधा जी का भाव भी लिया। क्या भाव? मैं ब्रज में कृष्ण भानु महाराज की कन्या हूं। अब इसको इस रूप में सोचिए, राधा भाव करने से ऐसे नहीं सोचिए, मैं कृष्ण भानु महाराज की, मैं किशोरी गोपी हूं, हमारा विवाह जावत नहीं हुआ, मैं नंद नंदन के पुत्र पर आसक्त हूं, वही हमारा प्रेमी है, वही हमारे प्रियतम है, मैं लुक छिप करके, मैं लुकिया तृप्त और किसी को नहीं जानती, और कृष्ण को की सेवा सबसे अधिक वही करती है, परम सुंदरी है, रूपवती है, गुणवती है, उदार है, समस्त गुरुओं की आदर और उनमें महाभाव तक है, इसलिए इस भाव को चोरी करके तब कृष्ण में कितना माधुर्य है ये कृष्ण तब समझ। ये लोग क्या हुआ, कहीं कथा आती है कभी नंद भवन में बच्चे स्थिति में हाथ में मैया ने मक्खन दे दिया, दाहिने हाथ में मक्खन ले लिए हैं, खाने को है, खा रहे हैं और एक खंभा में अपने हाथ को ऐसे कर और उसी को और अपनी छाया उस मणि स्तंभ में दे, देखते देखते देखा जी इस खंभे के अंदर में पास ही में एक लड़का खड़ा हमारे जैसे ही श्याम रही हाथ में मक्खन लिया है। उन्होंने इस बच्चे से मित्रता करने के लिए उन्होंने वो मक्खन उसको देना रहा, तो वो दे रहे हैं तो वो भी छाया जो थी वो भी देने लगे। तो देखा जैसे ये भी हम जैसा करते हैं हमारा अभिनय कर रहा है, तो उन्होंने बंदर घूटी उस बच्चे को, तो उस बंदर बच्चे ने भी बंदर घूटी उसको। इतनी में यशोदा जी पासी में थी, वो देखे ये क्या कर रहा है, किसको देख रहा है, किसको बंदर घूटी दे रहा है। उन्होंने देखा जी हमारा ये तो अपना ही बच्चा अपनी छाया देकर ऐसा कर खेल रहा है, बस झट लज्जित होकर के उनकी गोदी में आ गए और उनके अंतर से अपने उनके अंदर में ऐसी ही राधिका जी हमारे रूप का जैसा अनुभव करती उस रूप को ऐसा अनुभव करना चाहता, इसीलिए चैतन्य महापुरुष के रूप में वो है। तो ये निज गुण कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन अनुसंगे प्रेम मैं, आपने उसी भाव से ये रूप दिया, दोनों का मिश्र राधा और कृष्ण, उनका अपना स्वयं कृष्ण है, राधा जी की भाव और कांति को ग्रहण करके आज विश्व को उस प्रेम से आनंद भाव से डुबा रहे हैं और स्वयं उसका आत्मा आदि कर रहे हैं। अगले दिन इसके और भी समझ तब ये समझिए सबसे उन्नत भाव है शांत दास सख्त बात सही और इनमें भी सबसे उन्नत है मधुर भाव गोपियों का। जब इस मनुष्य जीवन में हम लोग उसी भाव को ग्रहण करने के लिए आए पर हम लोग कैसे पा सकते, अरे जब कृष्ण ने दया करके मथुरा वृंदावन में किसी प्रकार से जन्म या किसी प्रकार का संबंध दे दिया
तो जरूर हम लोग इसके अधिकारी हैं, जरूर हम लोग इसको साथ थोड़ा सा साधन तो करें। विघ्न बाधाएं आएंगी, विषमित तो तपस्या कर रहे थे ना, 100 वर्ष की तपस्या पर बैठे थे, फिर काम से देखा नहीं गया, तो क्या किया हम उर्वशी को भेज दिया, पैर फिसल गया, हाय अब तब तक नहीं समझे, जब पैर फिसल गया उनका एक पैर टूट गया, हाय पैर टूट गया, क्या करने जा रहा था, क्या होगा, ऐसे विपत्तियां आएंगी, तरह तरह की बाधाएं आएंगी, किंतु हम नाक की सीध में ठीक चलेंगे। गुरु वैष्णव का संग कभी नहीं जीवन में जन्मांतर में नहीं छोड़ेंगे, मथुरा वृंदावन को भी नहीं छोड़ेंगे जब तक यह प्रेम हमको प्राप्त नहीं, और विपत्तियां आते रहें क्या, ऐसी ऐसा संकल्प के देव दुर्पदक्षेप के साथ में हम लोग आगे बढ़े, जरूर कृष्ण का मिलना दूर नहीं, जरूर मिलेंगे ही।
नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरक्षे, हे कृष्ण करुणा सिंधु नीलबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गणभासंतम सप्तकंचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानी हा देवी का सुंदर गतिवतयाचर जाति पत्र को दंडवत मधुमतास्ती अश्वस्तमुदस्त अंग श्याम प्रकाशो मंदे कृतेन्द्रीवर जटयाृंदारण्य निवासीनमो राधास्कंदीक्षिपरागे नमस्ते कृष्णाय कृष्णभक्तायंत्रमेतमेत
धारामानंद और महाप्रभु जी का संवाद चल रहा था, अब अंत में बतला रहे हैं। धारामानंद ने पूछा कि और फिर मैंने पीछे देखा श्याम कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा उसके सामने एक सुंदर सोने जैसी सुंदर आकृति राधा जी के रूप में खड़ी थी, और उनकी शांति से कृष्ण की शांति प्रचारित हो गई। मैंने इस चीज को देखा,
मैं नहीं समझ पा रहा। उन्होंने कहा कृष्ण के प्रति आपका प्रेम है, जाति रही भावना जैसी बनी हुई होती है, आप अपनी भावना के अनुसार में हमें कृष्ण देख रहे हैं, ये मेरी कोई विशेषता नहीं, आप तो पेड़ को भी कृष्ण देख रहे हैं, जहां जहां आप देखेंगे वैसा ही कृष्ण ही के रूप में देखेंगे, भक्तों का ऐसा ही भाव महाभाव ऐसे ही देखें, भाव जब हम ना देखें देखे तार स्थाव जंगल पेड़ पौधे मनुष्य इत्यादि को वो नहीं देखते, वो उनके अंदर में क्या देखते हैं, श्याम सुंदर की मूर्ति को देखते हैं, और श्याम सुंदर में भी समस्त जीवों को देखते हैं, यही तो महाभागवतों का दर्शन है। आप कौन महाभागवत राय जी ने कहा रमानंद अपनी चाकरी छोड़िए, कपटता मत मुझसे कीजिए, मुर आगे नहीं जरू ना करो बचूंगी, आप हमसे कपटता न, कपटता किसको कहते हैं, जब कार्य में और उसके उद्देश्य में पार्थक्य होता है, काम कुछ और करेगा नहीं, अब भीतर की भावना उद्देश्य अलग है तो उसको कपटता, जब मन की बात और ऊपर की बात ना तब इसको कहते हैं कपटता। अर्थात एक आदमी आया हंस करके उससे मिले, आपको देख करके मैं बहुत प्रसन्न कर गया, और जब वो चला गया ये चला गया तो अच्छा हुआ, ये बेकार था फालतू आदमी हमारा समय नष्ट, ये हो गई कपट। इसलिए बात और फिक्र में दो बातें हूँ तो इसको कहते हैं कपट का। वो कारण महाप्रभु जी को आप हमसे कपट का मतलब है, आप ऊपर से सन्यासी दिख रहे हैं और भीतर से कृष्ण देख रहे हैं, तो ये आप बतलाइए आप कौन हैं, आप कौन है बतलाइए। राधिकार भाव कांति कही अंगीकार निधि आस्वादित कही अच्छा होता, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने को ही आस्वादन करने के लिए राधिका जी की जो मूर्ति जो सामने खड़ी है उसी के भावों को आपने चोरी कर लिया है और उनके भाव से अपने को आस्वादन करने के लिए ये रूप, अथवा आनुषंगिक रूप में आप अपना ही प्रेम देने के लिए सब भक्ति ये ऐसी चोरी है, कृष्ण किंतु सन्यासी के रूप में आप महाप्रभु जी आए थे किस लिए, कलयुग सबसे खराब युग माना जाता है साधारण दृष्टि, उस समय में लोग धर्म के तीन अंग की चारों अंग एक अंश रहता है, चार पैर की गलिया, तो चार पैर की गलिया में सतयुग में एक पैर, सतयुग द्वापर में त्रेता में एक पैर खत्म, माने एक अंश, और त्रेता युग में दो, और कलयुग में
तीन गया,
तीन चला गया, तीन अंश चला गया एक अंश है, माने क्या
सप्त
शौच माने पवित्रता गया और दान, ये धर्म के चार कार्य हैं, तो कलयुग में ये चारों पाद ही तीन भाग टूट जाते हैं, एक भाग रह जाता है, सत्य कुछ दया भी कुछ कुछ है, दान भी कुछ है, और कुछ शौच भी पवित्रता कुछ है, किंतु एक चौथाई भाग है और बाकी सब खत्म, बड़ी भयंकर दशा होती है, और ये देखने में ही जी सीधा उठता है। भविष्य काल में न जाने क्या होगा, और ये देखकर क्या ऐसा होगा। आज के लड़के अपने माता पिता को नहीं देखते, शिष्य भी गुरु को नहीं देखते। चार तरफ में आजकल जैसी हो रही है, राजनीति देखो, अर्थनीति देखो, समाज नीति देखो, कहीं कुछ नीति नहीं है। सदाचार धीरे धीरे लुप्त होता चला है, परोपकार धीरे धीरे नष्ट होता है, धीरे धीरे न जाने क्या। ये बड़े बड़े जो देश के बड़े बड़े कर्णधार है उनकी ये दशा, साधारणों की दशा न जाने क्या। इसलिए कलयुग सबसे भीषण है। कुछ दिनों में स्त्रियां अपने बच्चों को भी खा लेंगी, पुरुष लोग इतने भ्रष्ट को जाएंगे जिनकी कोई सीमा नहीं रहेगी। सब का स्वभाव ही एकदम दूसरे तरह का हो जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा, तत्कृष्ण ने नहीं देखा। इनका कल्याण होना चाहिए, सहज स्वरूप कुछ करेंगे तो नहीं, इसमें इसमें भी इनका भर्म भाव बना है, इनका कल्याण हो। इसलिए उन्होंने सर्व सहज रूप में प्रेम धर्म का प्रचार किया। अच्छा, जैसे हो वैसे रहो, समाज में राजनीति क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम हो जो जहां पर अवस्थित भगवान नाम, और उसके साथ में महाप्रभु जी ने विशेष क्या किया, नाम प्रेम माला जाति पराई दशा। और युग में नाम संकीर्तन युग धर्म है, और आते थे भगवान का अवतार और उनकी शक्तियां आचार्य लोग ये जो नाम का प्रचार करते हैं, किंतु प्रेम देने की बस उनमें नहीं, प्रेम नहीं दे सकते। महाप्रभु जी स्वयं भगवान कृष्ण है, इसलिए प्रेम के सूत्र में नाम को बुझ करके जीवों को सुना। ये प्रेम क्या है, पांच प्रकार के प्रेमों में से शांत और दास, सख दास, सरल और मधुर। इनमें विशेष करके मधुर रस दिया, मधुर रस का एक भाव, उसके बहुत से भाव, एक भाव दिया सेवा करना, ये भाव को रख दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। इसी को हम आपके चरण की रात खुश होती रखा है। आज तक ये नहीं दिया गया था महाप्रभु के पास में, ये प्रेम ही जीव मात्र का धर्म है। कोई भी प्राणी को ले लीजिए, बाघ सिंह को भी ले लीजिए, जंगल में रहता है, आदमी को देखता है तो टूट फट करके उसे पकड़ करके खा जाता है, किंतु अपनी पत्नी को प्यार करता है कि नहीं, वो अपने बच्चों को तो करेगा। इतने कुखार डकैत हैं, कितने कितने सब डकैतों का नाम सुना, किंतु ये किस लिए करते हैं, अपने कुटुंबियों के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, अपने पुत्रों के लिए, ये सब डकैती और ये सब काम करते हैं। प्रति किसी न किसी रूप में उनमें अवस्थित, जरूर अवस्थित, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। अरे यहां तक कि पेड़ पौधे भी अपने अपने संतान का प्यार को प्यार करते हैं। कैसे, जो इस विषय के जानने वाले हैं ना वो समझेंगे, ये पेड़ अपने पेड़ को कैसे बड़ा करके और तब फिर अपने को छोड़ देते हैं शरीर को और उनको देख करके बड़े होते हैं। पेड़ों से पेड़ मिलने में उन्हें एक आनंद होता है, बातचीत करते हैं, सेंसेशन इत्यादि उनमें होता है। मनुष्य से अगर गाय अपने बछड़े को जो प्यार करती है, मनुष्य अपने बछड़े को उतना प्यार नहीं करता। इसलिए प्रेम ही जीव मात्र का धर्म है। किंतु यही प्रेम जब भगवान के साथ में होगा, आत्मा का भगवान के साथ में, तो यह जीव का धर्म है। ये स्वभाव से नित्य जीवों का यही नित्य सहचर स्वभाव है, भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति प्रेम। किंतु अभी इस समय माया की वजह से हमने अपना प्रेम संसारी के शरीर के प्रति हार मान सेवा इत्यादि, मिट्टी के प्रति अभी प्रेम कर रहे हैं, उसी को नित्य मान रहे हैं। महाप्रभु जी ने बताया कृष्ण को भगवान से प्रीति करो, उसके बिना सुख और शांति नहीं हो सकती है। कैसे होगा? नाम के माध्यम से होगा। इसलिए प्रेम के सूत्र में नाम को गा करके जीव मात्र को देने के लिए महाप्रभु जी आए। ये बाहरी लक्षण, और आंतरिक लक्षण क्या है? उस प्रेम को, राधा जी के स्पेशल प्रेम को,
कौन?
राधा जी के मदनाख्य भाव, मदनाख्य महाभाव, इसकी धारणा बहुत कम लोगों की है। मदनाख्य महाभाव इसका राधा जी का भाव है, उसी को प्रेम रस लीजा स्वादन करने के लिए आए, जो कृष्ण लीला में नहीं पा। ये महाप्रभु जी के अवतार का विशेष कारण इसलिए है। और उसका छींटा फोटा, छींटा होता है जैसे वर्षा होती है, इसकी छिटकी इधर उधर पड़ जाती है, वो चीज दान करने के लिए,
आस्वादन करने,
आस्वादन करने के लिए तो प्रेम मतलब छींटा फोटा जो है उसे जो जमीन में पड़ा फिर उसे निकला, ये हुआ वो प्रेम दान करने के लिए। रामानंद जी, रामानंद जी समझ रहे हैं, और समझा इस समय, अब तक नहीं समझ रहे थे। योग माया ने महाप्रभु जी को और राधा उनको छत करके रखा था, रामानंद के विचार को। अब थोड़ा सा उनकी कृपा हुई, उन्होंने हंस दिया ना महाप्रभु जी, जब उन्होंने कहा तब हंस दिया। हंसने का तात्पर्य क्या? तात्पर्य जैसे, और रामानंद ने हमको समझ लिया, इसलिए जरा समझ गया तो लुका चोरी हो रही है। लुका चोरी मैंने क्या?
आंख मिचौनी,
आंख मिचौनी होती है, बच्चे कहते हैं आंख मिचौनी ना, जब तक वो छिप, लड़का छिप रहा है, जब तक कि जो देखने वाला नहीं देख, जब देख लिया ना तब तक फिर वो सामने आ जाएगा। इसी तरह से जब तक लुका चोरी छिप रहे थे महाप्रभु, तब तक तो छिप रहे थे, जब हंस दिए इसका मतलब है कि वो जान गए। निज गुण कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन अनुसंग प्रेम माय खोज त्रिभुमा, चैतन्य महाप्रभु जी समस्त विश्व को प्रेम में कर। आज भी देश के बाहर, भारतवर्ष के बाहर भी इसका प्रचार किसी न किसी रूप में हो रहा है। रामानंद जी का आप इतने दूर से आए हमारा उद्धार करने के लिए, और यहाँ आकर के आप कपट व्यवहार कर अपने को छिपा रहे हैं, अपने स्वरूप को हमारे पास में प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा कौन सा व्यवहार है? तब यहां से प्रभु तारे देखा ही रस प्रभु रसराज महाभाव पूरी एक। तब महाप्रभु जी हंस दिए, और हंस करके जट उनको अपनी जोग माया को हटा दिया, और हटाने के साथ साथ में उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा, क्या देखा? रसराज कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है, कृष्ण को उस रूप में देखा, अखिल प्रशामित मूर्ति के रूप में, और महाभाव मदनाख्य महाभाव के रूप में दोनों को देखते ही दो ही एक रूप, दोनों का एक साथ जप। कृष्ण की नील कांति और राधा जी की गौर कांति दोनों मिलकर के एक हो गए। पहले उन्होंने कृष्ण को देखा है, महाप्रभु जी को सन्यासी के रूप में देखा है, और कृष्ण को भी देखा है विशाखा के रूप में, जब विशाखा के रूप में कृष्ण को देखा है, आज उन कृष्ण को भी देख रहे हैं, तब तक मूर्छित नहीं हुए, अब उनको आश्चर्य नहीं हुआ। राधा और कृष्ण को पृथक रूप में देखा, राधा जी घर में खड़ी हैं, उनके